शिवी ऑफिस की लिफ्ट में आर्या के साथ मौजूद थी। आर्या के कॉल करने पर उसका मोबाइल बजा। उसका मोबाइल रिंग होने पर आर्या ने उसकी तरफ देखा। शिवी चाहकर भी उसके सामने कॉल पिक नहीं कर सकती थी। आपका फोन बज रहा है मिस अय्यर, मैं भी किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ कॉल पिक कर लीजिए, आर्या ने कहा। मैं ये कॉल पिक नहीं करना चाहती, शिवी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो, एटलीस्ट चेक तो कर लीजिए। आर्या की बात सुनकर शिवी सोच में पड़ गई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही शिवी हूँ? अगर मैंने इसके सामने फ़ोन निकाला और इसने अपना गिफ्ट किया मोबाइल पहचान लिया तो क्या होगा? कहाँ खो गई आप? आप बिना देखे कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि किसका कॉल है और आप उसे क्यों पिक नहीं करना चाहती? आर्या ने शिवी की तरफ घूर कर देखा। उसका इस तरह खुद को कवर करके आना उसे काफ़ी अजीब लगता था। शिवी की किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट आर्या के फ्लोर पर आकर रुक गई। आपका फ्लोर आ गया है सर, उसने कहा। आर्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा। अगर ये लड़की टैलेंटेड नहीं होती तो मैं अभी इसे काम से निकाल देता। पूरा ऑफिस इसके बारे में बातें करता है कि ये खुद को इतना कवर करके क्यों आती है। मुझे इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही इसे यहाँ जॉब देनी चाहिए थी। आर्या के मन में शिवनंदिनी की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो उसके काम से इम्प्रेस था, लेकिन साथ ही उसका बिहेवियर उसके समझ से परे था। वहीं आर्या के लिफ्ट से जाते ही शिवी ने राहत की सांस ली। एक तो ऐसे ही मास्क के पीछे ठीक से सांस नहीं आती, ऊपर से जब देखो ये सामने आ जाता है। इसे देखकर मेरी सांसें ऐसे ही अटक जाती हैं। मुझे ध्वनि मैम से बात करनी होगी। मैं कब तक इसके सामने छिपकर रहूंगी? अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन दम घुटने की वजह से मेरी यहाँ मौत हो जाएगी। लिफ्ट में किसी और के ना होने की वजह से शिवी ने मास्क उतार दिया। शिवी अपनी वर्किंग डिपार्टमेंट में पहुंची। उसका दिन हमेशा की तरह नॉर्मल था, जहां उसे कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बनाना होता था। अपनी अजीब मेडिकल कंडीशन बताने की वजह से वो अपनी टीम मेंबर से थोड़ा दूर बैठती थी। ओबेरॉय मेंशन के बाहर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था। वो अंदर से दिखने में किसी रेस्टोरेंट की तरह था, जहां मिस्टर आशुतोष ओबेरॉय लंच या डिनर के साथ अपनी बिजनेस मीटिंग्स किया करते थे। लंच टाइम में वो वहां कैरन के साथ मौजूद थे। उनके सामने नील के पापा मिस्टर जिम वॉटसन और शिवी की मॉम नंदिनी बैठी थी। हमेशा की तरह हम एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, पर तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है जिम, आशुतोष ओबेरॉय हंसकर बोले। आई मस्ट से योर वॉइस इज वेरी ब्यूटिफुल। उसकी बात सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। आशुतोष आगे बोले, हम सबने सोचा था तुम दोनों एक हैंड वेडिंग करोगे और रिसेप्शन पार्टी भी काफी शानदार रहेगी। फिर ऐसे सिंपल तरीके से शादी करने का क्या मतलब हुआ शाह? पार्टी तक नहीं दी? बाकियों का छोड़ो, मुझे तो बुला लेते, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। बस ऐसे ही, मुझे और नंदिनी को मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अचानक शादी करने की वजह से हम दोनों के बच्चे ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सोचा सब कुछ सिंपल तरीके से करने, जिम ने जवाब दिया। बच्चों का क्या है, वो बड़े हो गए हैं, हम कब तक उनके बारे में सोचते रहेंगे? मेरा बेटा आर्या तो कभी भी मेरी किसी भी शादी से खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी हर बार मैंने ग्रैंड वेडिंग की और इस बार भी मैं कैरन के साथ एक बड़ी सी पार्टी करके हर एक फंक्शन को अच्छे से सेलिब्रेट करने वाला हूँ, बोलते हुए आशुतोष ने कैरन के हाथ को पकड़कर उस पर किस किया। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए अकेले ही रहना पड़ता है। मेरी भी फैमिली हम दोनों की शादी से खुश नहीं है, बट स्टिल आई विल नेवर लीव हिम, कैरन ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया। हाँ, हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी खुशी का सोचते हैं, पर पता नहीं क्यों वो बड़े होने पर हमें छोड़ देते हैं। नील ने तो फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पर मेरी बेटी अभी भी जिम को अपना डैड नहीं मानती, नंदिनी ने मायूसी से कहा। पर शिवी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, जिम ने उसका मूड सही करने के लिए कहा। आप बेवजह सैड हो रही हैं नंदिनी जी, आशुतोष ने जवाब दिया। पहले का टाइम और था, उस टाइम माँ बाप और बच्चे एक दूसरे के लिए जीते थे। अब अगर हम अपने बच्चों को कहें कि वो हमारे हिसाब से रहें या शादी करें तो क्या वो हमारी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं, तो फिर हम उनकी क्यों सुने? शिवी एक अच्छी लड़की है, नंदिनी ने उसे बहुत प्यार से भी पाला है, वो थोड़ा टाइम ले रही है पर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी, जिम ने मुस्कुराकर कहा। वो हमेशा से ही शिवी को पसंद करता था। तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हें मेरे बेटे से मिलना चाहिए ताकि वो तुमसे कुछ सीख सके, आशुतोष ने हंसकर कहा। मुझे नहीं लगता उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, मैं उसे बिजनेस पार्टीज में मिल चुका हूँ। तुम्हारी उससे नहीं बनती होगी, पर वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कम समय में उसने सक्सेस हासिल की है, कोई मुश्किल से ही ऐसा कर पाता है, जिम ने कहा। ही इज हैंडसम टू, कैरिन ने वाइन का ग्लास पकड़कर कहा। उन सबका आर्या की तारीफ करना आशुतोष को पसंद नहीं आया, उसने तो सक्सेस हासिल कर ली, पर मैं उसकी वजह से रिटायरमेंट नहीं ले सकता, शौर्या अभी छोटा है, उसके बड़े होने तक सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। लोगों की नजरों में वो लायक बेटा होगा, लेकिन मेरी नजरों में बिल्कुल नहीं, ना उसने मेरे बिजनेस को संभाला और ना ही कभी मेरी और मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की, आशुतोष के चेहरे के भाव सख्त है। उसकी बात सुनकर जिम और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। नंदिनी ने मामले को संभालते हुए कहा, आइडिया थोड़ा पुराना है, पर आप चाहो तो उसकी शादी करवा सकते हो, पुराने जमाने में यही किया जाता था, जब लड़का माँ बाप या घर वालों की नहीं सुनता था, उनके हिसाब से नहीं चलता था तो उनकी शादी करवा दी जाती थी ताकि वो उनकी वाइफ के जरिए उसे कंट्रोल कर सके, पर ये सरासर हालत है, सबको अपनी लाइफ जीने का हक है,
आप उन्हें शादी करवाकर बांध नहीं सकते, अरेंज मैरिज से तो बिल्कुल भी नहीं। जिम ने नंदिनी की बात का विरोध किया। मैं मिसेस नंदिनी की बात से सहमत हूँ। मेरी और आर्या की मॉम की भी अरेंज मैरिज हुई थी, वो एक आइडियल लाइफ पार्टनर थी। आशुतोष ने नंदिनी का पक्ष लिया। उनके मुंह से पहली बार अपनी पत्नी बंधन का जिक्र हुआ था। बंधन के जाने के बाद से सब कुछ बिखर सा गया। मैं खुद को संभाल ली हूँ के चक्कर में आर्या को भूल गया और अब ये हाल है। आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप भी अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा सकते हैं, नंदिनी बोली। उसकी बात सुनकर आशुतोष जोर से हंसा। आप जानती नहीं है नंदिनी, मेरा बेटा मेरी पसंद का खाना तक नहीं खाता और आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करने की बात कर रही हैं। वो मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि अब तो वो हमारे साथ तक नहीं रहता। उसे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा, जिम ने कहा। लंच करने के बाद जिम और नंदिनी वहां से चले गए। नंदिनी जिम के साथ गाड़ी में थी और उसके लैपटॉप में आर्या का प्रोफाइल खुला हुआ था। वो उसे काफी गौर से देख रही थी। तुमने आर्या का प्रोफाइल क्यों खोल रखा है नंदिनी? डोंट टेल मी अब तुम उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आने वाली हो। वैसे भी आज शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो गया, जिम ने मजाकिया लहजे में कहा। कुछ ऐसा ही समझ लो, लड़का देखने में अच्छा है और सक्सेसफुल भी। देखा जाए तो इसमें वो सभी क्वालिटीज हैं जो एक माँ अपने बेटी के होने वाले पति में देखती है, नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जिम के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या तुम शिवी के बारे में? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया। जिम आगे बोले, कभी भी नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, पहले के और अब के टाइम में काफी फर्क आ गया है और तुम आर्या को अभी जानती ही कितना हो।
इसके बारे में मुझे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। वो आशुतोष जी को पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने एक से ज्यादा शादी की है। इससे साफ है वो वन वुमन मैन है। अपने बाप की इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर उसने अकेले खुद की कंपनी शुरू की और उसे सक्सेस के मुकाम तक लेकर गया। मुझे नहीं लगता मुझे उसे जानने की जरूरत है। नंदिनी तो जैसे आर्या को एक नज़र में ही शिवी के लिए पसंद कर चुकी थी। जैसी चीज़ें ऊपर से दिखती हैं वैसी नहीं होती। मैंने आशुतोष के सामने बात नहीं, आर्या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है और अकेले एक घर में रहता है। ऐसी चीज़ें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता ना, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। बाकी सब छोड़ो, मुझे समझ नहीं आता तुम शिवी की शादी करवाने के पीछे क्यों पड़ी हो। क्योंकि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने लगी है। मैंने इस बारे में तुमसे बात नहीं की लेकिन वो अपने डैड का केस रीओपन करवाकर न जाने क्या कुछ कर रही है, नंदिनी ने गुस्से में जवाब दिया। तो जाकर उसे समझाओ और प्यार से बात करो, इस तरह शादी करवाना कोई सही डिसीजन नहीं होगा। अगर तुम ये करोगी तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी, जैसे आर्या अपने डैड से करता है। हम उसकी शादी करेंगे, वो भी किसी अच्छे लड़के से, जब वो तैयार होगी। वो जो भी होगा लेकिन आर्या सिंह ओबेरॉय बिल्कुल नहीं होगा, इस बार जिम ने सख्ती से जवाब दिया। नंदिनी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल के लिए उसने इस टॉपिक को ज्यादा खींचना जरूरी नहीं समझा, लेकिन वो अपनी तरफ से आर्या और शिवी को साथ लाने के बारे में सोच रही थी। ऑफिस में एक व्यस्त दिन बिताने के बाद शिवी अपने घर पहुंची। बार बार खुद को आर्या के सामने आने से रोकना और डिपार्टमेंट से बाहर निकलने पर खुद को कवर करके रखना, इन सबसे वो कुछ ही दिनों में काफी थक चुकी थी। शिवी बाथरूम में अपना मुंह धोकर मेकअप रिमूव कर रही थी। न जाने कौन सा सियापा पाल लिया, ऐसे लग रहा है ऑफिस में एक दिन नहीं एक साल बिता कर आ रही हूँ। मैं पहली लड़की होंगी जिसे लंदन की सर्दी में भी गर्मी महसूस होती है, शिवी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो चेंज करके बाहर आई तभी उसके पास जिया का कॉल आया। कहाँ गायब रहती है तू, एक प्लेसमेंट क्या मिल गई, तेरे तो दिन ही बदल गए। हाँ, काश मैं तुझे बता पाती कि मुझे इन सबसे कितनी खुशी मिल रही है। मैं ठीक से खुली हवा में सांस तक नहीं ले पाती और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कपड़ों के पीछे कैद कर रखा है, शिवी ने परेशान स्वर में कहा। ठीक है बस कर, तेरे दिल का हाल तेरी आवाज़ साफ बता रही है। चल इन सबको छोड़ो, मैंने और ईशान ने कुछ प्लान किया है, हम दो घंटे में तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, तब तक तैयार रहना, कुछ अच्छा सा पहनकर, जिया ने ऑर्डर दिया। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे समझ ले तुझे खुली हवा में सांस दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, जिया ने हंसकर जवाब दिया। उसने उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल कट कर दिया। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और आने का फरमान सुना दिया, मुझे कहीं नहीं जाना, बस सुकून से अपने कमरे में रहना है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। शिवी बुझे मन से वापस अपने कमरे में गई और जिया के साथ जाने के लिए तैयार होने लगी।